ओम शांति। मैं आत्मा इस दुनिया से बहुत दूर अपने आप को परम धाम में अनुभव कर रहा हूं। शिव बाबा के सम्मुख मैं अपने आप को भरपूरता का अनुभव कर रहा हूं। शांति, प्रेम, ज्ञान के सागर शिव बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा शांति, प्रेम और ज्ञान से भरपूर होकर मास्टर सागर का अनुभव कर रहा हूं। और अब मैं सूक्ष्म वतन में अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख अनुभव करता हूं। बाप दादा को बार बार थैंक्स बोल रहा हूं, शुक्रिया बोल रहा हूं कि मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका जो आपने हमें अपना बनाया, हमें हमारी कमी कमजोरियों सहित हमें अपना लिया और बेहद का प्यार दिया। अब मैं आत्मा अपने आप को ग्लोब के ऊपर अनुभव करता हूं। और यहां अपने अंग संग रहने वाले सभी भाई बहनों को साक्षी होकर देख रहा हूं। इन सभी आत्माओं को बाबा ने संसार के कोने से चुन चुन कर अपना बनाया है। जैसे बाबा हमें प्यार करते हैं, ऐसे इन सभी आत्माओं से बाबा बेहद का प्यार करते हैं। मैं आत्मा भी बाप समान फ्राक दिल बन इन सभी आत्माओं को उनके कमी कमजोरियों सहित दिल से स्वीकार करता हूं। ये सभी अपने भाई बहन हैं, ये सभी हमारे अपने हैं। इसी फीलिंग के साथ अब मैं आत्मा इस देह में ओम शांति, ओम शांति। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है वॉइसलेस से वायरलेस। आज का ड्रामा अनुसार वरदान भी यही है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। इसमें बाबा ने मुख्यतः तीन बातें बताई हैं। एक तो वॉइसलेस स्थिति, दूसरा याद, याद में रहने याद में रहने वाले वॉइसलेस बच्चे, और तीसरा अशरीरीपन का अभ्यास। ये यदि तीनों चीजें हमारे में इकट्ठे हैं तो हम बाबा के डायरेक्शन को कैच कर सकते हैं। बाबा ने बताया इसमें जैसे बाहर वाले वायरलेस सेट के यंत्र है, उसके द्वारा अपनी आवाज को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, ऐसे अंत समय में जब विनाश आएगा तो बाबा के डायरेक्शन को कैच करके हम सेफ स्थान पर पहुंच सकते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या मिरेकल होते हैं जब हम वॉइसलेस स्थिति में रहते हैं। वॉइसलेस अर्थात आत्मा की वो ओरिजिनल स्टेट शांति, सुख, प्रेम, वो ब्लिस की स्थिति, जिसे आत्मा में मन में जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल साइलेंस में है, उस समय हमारी कैचिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, बाबा ने और भी बहुत सारी सेवाएं बताई है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। आत्माओं की आवाज को सुन सकते हैं, कैच कर सकते हैं, अपने विचार भी अस्पष्ट हम समझ सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं। और कोई भी कहीं दुर्घटना होने वाली है तो हमें पहले से पता पड़ जाती है, और यदि हम में पावर है तो उसमें हम सहयोग दे सकते हैं, उसका मतलब कि कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सेवा की स्पीड उससे बढ़ जाएगी ये स्थिति से। विभिन्न परिस्थितियों में भी हम एकांत मतलब कि साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, स्टेबल माइंड हो सकते हैं, अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। और कहीं भी कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली है या किसी का जैसे अकाल मृत्यु होने वाला है उसको भी टाल सकते हैं अगर पता पड़ जाए तो। बाबा ने एक मुरली में 12 प्रकार की सिद्धियां बताई है, जिसमें ये भी सिद्धि है, वायुमंडल को परिवर्तन करने की, अकाल मृत्यु को टालने की, भटकती आत्माओं को ठिकाना देने की, ऐसे प्रकार 12 प्रकार की सिद्धियां बताई है बाबा ने। दूसरा, हम अगर हमारी स्थिति वॉइसलेस है तो जो मुरली आज चलने वाली है उसका तंत्र जो है, इसेंस है या वरदान या स्लोगन, ये सारे एक दिन पहले ही हमारे बुद्धि में डाउनलोड हो जाता है। अब कहीं पर कोई भाई बहन क्लास कराते हैं, उसके पहले ही उसका एसेंस जो होता है वो भी डाउनलोड हो जाता है। ये सभी का अनुभव होगा, कभी कभी होता होगा। बाबा बताते हैं कि क्योंकि ये 5000 साल में सेम रिपीट होता है ना हर बार, तो इसलिए वो पहले ही हमें कैच हो जाता है हर बातें। तो वॉइसलेस स्थिति इसका हमें लंबे समय तक अभ्यास चाहिए कि मन को एकदम साइलेंस में रखें, कोई भी विकार का इसमें प्रभाव नहीं हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान से मुक्त होने की स्थिति। थैंक्स मैं बोलता हूं कोरोना वायरस को, जिसने हमें 14 दिन का जैसे वनवास दिया, तपस्या का चांस दिया। वनवास हम नहीं बोल रहे हैं, जब हम शांतिवन से यहाँ आए ग्लोबल में सचिन भाजी के पास गए चेकअप कराने के लिए, तो जस्ट ही वाज जोकिंग कि वनवास से लौट के आ गए। इट वॉज रियली टाइम टू चेक माई सेल्फ डीपली दैट वॉट इज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑल्सो। स्टार्टिंग में पहले तो शुरू में ऐसा लगा कि कहाँ हम फंस गए, लेकिन जब अपने ऊपर वर्क करना चालू किया, चिंतन करना चालू किया तो बहुत मजा आया। फिर जिसमें इसी स्थिति का ज्यादा करके अभ्यास कर रहा था, वॉइसलेस स्थिति का, साइलेंस में होने का, और इसको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, अपने स्थिति को कैसे शांत बनाए रखें हर सिचुएशन में। और यहाँ आने के बाद यही जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ड्रामानुसार सुशील भाई जी ने हमें सेम वही टॉपिक भी दिया इस पर। तो इस विषय में बताते हुए हम अपने कुछ अनुभव भी शेयर करेंगे जो इससे संबंधित है, और कुछ योग के प्रयोग का भी हम अनुभव शेयर करेंगे जो इससे संबंधित है। वैसे तो हमारे मन में कहाँ कहाँ से भावना रहती है कि यदि हम अपने अनुभवों को ज़्यादा शेयर करें या वर्णन करें तो उसमें शक्ति नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी दिल यही कहता है कि सबसे बड़ा अनुभव जो है, जो हमारे जीवन में वो सबसे बड़ा अनुभव है, वो है परमात्म साथ का अनुभव। इससे बड़ा कोई भी अनुभव नहीं होता है। तो इसके आगे सभी सिद्धियां, सभी अनुभव, सभी प्राप्तियां जैसे फीका है। और दूसरा है कि जब भी हम अनुभव सुनाए तो उसमें मैपन या अभिमान की बदबू नहीं हो। तीसरा है कि ये भावना से अनुभव सुनाए कि ये अनुभव सुनकर के किसी न किसी को तीर लगे, ऐसा कि उसके अंदर योग की ज्वाला वो उमड़ उठे, योग में उसके ज्ञान योग में उसके अंदर तीव्रता आ जाए। तो इस लक्ष्य से इसमें हम अपने अनुभवों को भी शेयर करेंगे। तो मन की स्थिति को बिल्कुल जब हम एक कंफर्ट जोन में रखने का प्रैक्टिस करते हैं, जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, उसमें यदि जरा भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कोई ने कुछ कह दिया हमें, तो उसकी फीलिंग को चेक करना। और दूसरा, हम जब नॉर्मल स्टेज में हैं उसकी फीलिंग को चेक करना, दोनों का कंपैरिजन करने का हमें अभ्यास चाहिए। जैसे हम नॉर्मल टेम्परेचर वाले कमरे में बैठे हैं जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है, और यदि कोई अचानक हीटर चालू कर दे तो तुरंत हमें महसूसता हो जाती है बॉडी को, कुछ वो फीलिंग महसूसता हो जाती है, या कोई एसी चालू कर दे तो पता पड़ जाता है। ऐसे हम यदि अपने नॉर्मल स्थिति में है और यदि कोई बात आती है हमारे सामने दूसरी, तो वो अलग से फीलिंग चालू हो जाती है, जैसे कि दिल को बेचैनी से होने लगती है। और उसी समय यदि हम इस जो फीलिंग है, जो निगेटिव टाइप्स की फीलिंग है, उसको हमने यदि उस पर हमने चेक नहीं किया, उसको स्टॉप नहीं किया वहां पर, तो उसके आधार से जो हम चिंतन करेंगे सारे निगेटिव होंगे। उसके ऊपर कितना भी हम ज्ञान का, योग का चिंतन कर, उसको खत्म करने के लिए कि सामने वाले का ड्रामा पार्ट ऐसा है या उसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, स्वभाव का पर्व, वो काम नहीं करता है, क्योंकि अंदर जो है ना वो दुख का, वो हर्ट का तीर चुभ चुका होता है हमारे अंदर। इसलिए सबसे पहले हमें उसको हील करना होता है, और उसको हील करने के लिए हमें तुरंत अपने आप को परम धाम में ले जाने का प्रैक्टिस, तुरंत ही अशरीरी बन के बाबा के पास पहुंच जाना, और फिर अपने आप को जैसे होम क्वारंटीन कर देना, तुरंत ही परम धाम में पहुंच जाना, और वहां से बाबा से कनेक्शन जोड़ करके शांति में, सुख में, आनंद में, प्रेम में जब भरपूर हो जाएंगे, फिर उस सिचुएशन के बारे में हम चिंतन करेंगे तो सारे पॉजिटिव आते हैं, फिर नेगेटिव नहीं आएंगे। जैसे यदि हमें कोई बात, कोई कड़वे वचन बोल दिया हमें, तो तुरंत अंदर से वो जो फीलिंग आती है अंदर से, वो चुप जाता है अंदर, तो हम उसको मतलब कि रिएक्ट करते हैं तुरंत, अगर हमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो, अशरीरीपन का अभ्यास नहीं किया तो। इसके लिए हमें एक तो ये अभ्यास करना है, दूसरा एक बहुत ही बाबा बताते हैं, बार बार आए दिन मुरलियों में आता है, शुभ भावना और शुभकामना, कि हमारे अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन की स्थिति हमेशा एक जैसी रहेगी। शुभ भावना और शुभकामना जब हम किसी को देते हैं तो वो देने के बाद दो घटनाएं घटित होती है। एक तो जिस आत्मा से, जिसके स्वभाव संस्कार से हम तंग होते हैं बार बार या हर्ट फील करते हैं, अगर उसके लिए हम शुभ भावना देते हैं तो यदि उस आत्मा के अंदर, स्वयं के अंदर चेंज होने की अभिलाषा रहती है, उसके अंदर वो कामना बनी रहती है कि हाँ मैं चेंज होना है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत या पावर नहीं रहती चेंज होने की, उसको परिवर्तन करने की, तो उससे जब भूल हो जाती हो तो उसको, उसके भी मन को खाता है बार बार, लेकिन फिर भी वो चूंकि उतना स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है। ऐसे आत्माओं की यदि हम सुभावना देते हैं तो वो सुभावना से वो अपने आप को वो पावर फील करते, कैच करता है और फिर अपने आप में परिवर्तन चालू करता है। तो धीरे धीरे उसके उसके परिवर्तन से हमें सुख की अनुभूति हमें भी होती है, हम भी व्यर्थ और निगेटिव से बचने लगते हैं। दूसरा ये, यदि उसके अंदर परिवर्तन होने की भावना ही नहीं है, जानबूझकर परेशान करने के संस्कार है, या कहें कि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है चेंज होने का, तो इस टाइप की आत्माएं यदि हम उनको सुभावना देते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो धीरे धीरे हमारे जीवन से सदा के लिए दूर चले जाते हैं, हमारे पास नहीं रहेंगे वो। तो सुभावना इतना पावरफुल है कि सामने वाला या तो चेंज हो जाएगा या तो आपके आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन सुभावना इतना पावरफुल शस्त्र है जिसे उठाने के लिए आत्मा में बहुत ताकत चाहिए। वैसे तो आए दिन हम बोलते हैं कि जब भी कोई बात आती है या कोई हमारे पास लेके कोई बात आता है तो हम बोलते हैं कि सुभावना शुभकामना दो, सुभावना शुभकामना दो, लेकिन ये होता नहीं है। ऊपर ऊपर से कहते हैं सुभावना देना, लेकिन अंदर से जो बताया ना, हर्ट का जो तीर चुप जाता है ना, वो कहीं ना कहीं से अंदर अंदर बद्दुआ निकलता है, ऊपर से सुभावना का हम बोल बोलते हैं। तो इसलिए कहा कि शुभ भावना के लिए आत्मा में बहुत ताकत चाहिए। वो ताकत कहां से आएगी? जब हम बाबा से जुड़ करके, अशरीरी होकर के, जब बाबा से हम गहरा प्यार की फीलिंग करके अपने आप को पहले हील करते हैं, अपने आप को पहले दुख से मुक्त कर लेते हैं, उस समय जब बाबा से गहरा प्यार का फीलिंग होता है, जब हम नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, अच्छी अवस्था हमारी हो जाती है, उसके बाद जब उस आत्मा के, उस आत्मा के भी ओरिजिनल स्टेज को देखेंगे कि वो आत्मा भी, मतलब उसके बाद तब हमारे अंदर अच्छा चिंतन चालू होगा कि वो आत्मा भी प्योर है, हमारे तरह शुद्ध है, बहुत अच्छी आत्मा है, तो ये सुभावना उसको लगेगी ऐसे, तो उसके अंदर परिवर्तन चालू होगा। लेकिन यदि हमने उसके निगेटिव बातों को ले लिया, उसके बारे में बार 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 चिंतन करते हैं, तो ये बहुत लंबा समय तक चलेगा और संस्कार टकराव बहुत लंबा समय तक चलते हैं, ना तो हम परिवर्तन होंगे ना तो वो परिवर्तन होते हैं। और बाबा का जब चाहे तब गहरा प्यार अनुभव कर ले, इसके लिए भी कंडीशन है कि जब चाहे तब हम, जब चाहे तब बाबा के तुरंत ही वो गहरे प्यार की फीलिंग कर लें, वो प्यार हमारा दिल से भर जाए, उसके लिए हमारे अंदर प्योरिटी का बल बहुत ज्यादा चाहिए। और दूसरा, बाबा के हर डायरेक्शन को, हर श्रीमत को पालन करने का यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं, तो बाबा का प्यार हमें जब चाहे तब, जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को पता पड़ जाता है कि बच्चे क्या चाहिए। ये तो हुआ शुभ भावना शुभकामना। दूसरा, जब हम नॉर्मल स्थिति में हैं तो और क्या बातें आती है जो कि हमारे मन को डिस्टर्ब करती है, जिसे कभी ऐसा लगता है कि किसी से कुछ अनबन भी नहीं हुआ है, कोई तकरार भी नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है ऐसे दिखने में आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे दुख की फीलिंग या निगेटिविटी की फीलिंग वो आने, अंदर से आने लगती है।
और
कुछ पूर्व जन्म के हिसाब किताब रहते हैं जो बाहर आते हैं। दूसरा ये कि दूसरा ये भी कि जब हम किसी को जाने अनजाने कभी दुख दिए रहते हैं तो वो आत्मा यदि उस समय दुखी होकर हमारे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा सोच रही है या कुछ व्यर्थ चिंतन कर रही है तो वो उसका भी वाइब्रेशन हमें टच करता है, फिर अंदर से हम जैसे बेचैन हो जाते हैं। उस समय भी तुरंत हमें अशरीरी होकर के बाबा के पास पहुंच करके अपने आप को तुरंत हील करना होता है। अगर उसको उस एडवांस हमने तुरंत मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो अंदर निगेटिविटी बैठ जाती है, उसके आधार से हम लंबे समय तक रहते हैं। वो जो निगेटिविटी है ढूंढ ढूंढ कर मन बुद्धि उन बातों की तरफ जाएगी जो हमें दुख देने वाली होती है। उसी बातें के बारे में उन्हीं बातों के बारे में हम चिंतन बार बार करते रहते हैं और दुख का अनुभव करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है अंदर। उसी में हम चलते रहते हैं सारा दिन और कर्म भी करते रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो दुख के कारण वो बेचैनी के अंदर निगेटिव थॉट भी हमारे अंदर चलने चालू होते हैं। इसलिए उसको तुरंत हील करना होता है बाबा के पास पहुंच करके। दूसरा मन की स्थिति को जो डिस्टर्बेंस करता है वो ये जब हम देहधारियों को याद करते हैं। बाबा बोलते हैं कि बच्चे किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी देहधारी को याद करते हैं तो उसकी मन की स्थिति से हम जुड़ जाते हैं या उसका जो एनर्जी लेवल है उससे हम जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं याद के द्वारा हमारे एनर्जी उसको और उसकी एनर्जी हमें एक्सचेंज होती है एनर्जी। सपोज यदि कोई व्यक्ति है जिसे किसी बात कोई उसे कुछ बोल दिया है, कोई बात आ गई है जिससे वो बहुत अपने आप को हर्ट फील कर रहा है, बहुत निगेटिव चल रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे उसके अंदर और हमें यहां पता नहीं है उसके बारे में, और किसी भी वजह से यदि उसके विशेषता की वजह से भी उस व्यक्ति को हम थोड़े समय याद कर लेते हैं तो वो जो उस समय की जो उसकी मन की स्थिति है जो निगेटिविटी वो तुरंत हमारे अंदर आ जाती है और थोड़े देर के बाद हमारे अंदर भी वही चिंतन चालू हो जाते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और उसके आधार से हम अपने ही दुनिया में फिर चले जाते हैं, फिर व्यर्थ और निगेटिव चिंतन करने लगते हैं। उसका चिंतन अलग रहता है, हमारा चिंतन अलग जाता है, लेकिन एनर्जी जो होती है ना दुख की हर्ट की वो सेम रहती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाबा बोलते हैं कि कोई माया के परवश हो जाते हैं किसी वजह से तो उसके अंदर मन सा तूफान आने लगते हैं, हमें पता नहीं किसी व्यक्ति के बारे में, यदि हम उस व्यक्ति को हम याद कर लिए तो वो एनर्जी इतना डेंजरस है कि हमारे पास भी आ जाएगी। ये भी कोरोना से कम नहीं है, बहुत घातक है, छुआछूत की जैसे बीमारी है, एक की बीमारी दूसरे की तीसरे में ऐसे फैलती केवल याद करने से। इसलिए याद करना किसी देहधारी को कितना डेंजरस है। ऐसे व्यक्ति को हम याद कर लेते हैं जिसके अंदर यदि मनसा तूफान चल रहा है तो वो एनर्जी हमारे में आ जाती है, फिर हम भी उसके यदि हमारा योग बल अच्छा नहीं है तो हम भी उसके प्रभाव में आकर के फिर हमारे अंदर वही चिंतन अशुद्ध चिंतन चलने लगते हैं। उस समय यदि हमें कोई तीसरा याद कर रहा है तो वो एनर्जी उसको फिर उसको कोई याद कर, ऐसे वायुमंडल जो होता है ना एक जाल के जैसा फैल जाता है, वायुमंडल बहुत दूषित तमो प्रधान निगेटिविटी से भरपूर हो जाता है। इसके लिए इस प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है, सूरज भाई जी ने बताया था, अपने को सेफ्टी रखने के लिए कम से कम हर दिन का 4 घंटे का योग बहुत जरूरी है, बाकी और सेवा करने के लिए तो 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन कम से कम इस ब्राह्मण लाइफ में अपने आप को सेव करने के लिए 4 घंटे का योग बहुत जरूरी है। यदि कोई हमें देहधारी याद आता ही है तो क्या करें कि हम मतलब कि एक अटेंशन रखें कोई भी देहधारी याद नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कि कोई ना कोई मन का ऐसा स्वभाव है जैसे कोई भी आधार लिया ना तुरंत अतीत में चला जाता है, ऐसा स्वभाव मन का नेचर है। जैसे यदि हम कोई फ्रेंड के पास गए हैं और उसने हमें कुछ भोजन बना के खिलाने का प्रयास वो दे रहा है, यदि समझो कि कोई पराठा ही बना के दिया, वो पराठा हमने खाया लेकिन वो टेस्ट ऐसा है जो हमारी कभी मम्मी बनाई थी सपोज, तो वो खाते ही किसकी याद आएगी हमें? तुरंत ही अपनी माँ की याद आएगी वो, क्योंकि वो टेस्ट ने उसका वो उसका आधार और टेस्ट का लिया और बुद्धि तुरंत वहां चली जाती है। सपोज हमें कोई पेन गिफ्ट के रूप में दिया है और हमने संभाल के रखा है, समझो किसी कबड़ में डाल दिया है, और 10-15 साल के बाद उस पेन को हम देखेंगे तो तुरंत बुद्धि स्मृति वहां जाएगी। तो मन बुद्धि कहां न कहां से किसी न किसी रूप से किसी न किसी देहधारी को याद करता ही है। ये अलग बात है कि हम किस भावना से किसको याद करते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने माता पिता के बारे में तो अच्छी भावना से याद करते हैं ना। लेकिन बाबा ने उनके लिए भी मना किया है, किसी भी टोटली रिजेक्ट किया है, किसी भी देहधारी को याद करना ही नहीं हमें। तो इसके लिए जब हम इसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या करना है क्या करना है, तो यही आया कि, और ये प्रैक्टिस करते करते आज हमें 5-6 वर्ष हो गए। स्टार्टिंग में तो लगा कि जैसे ये काम का है ही नहीं प्रैक्टिस, जब भी कोई बात आती थी तो जैसे उसको चिंतन को उठा के फेंक देता था बाहर, काम का नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अभी लगभग 60-70% तक आ गया कि किसी देहधारी को याद नहीं करने की क्षमता, वो कला। और वो कला ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं या कोई याद आता है सडनली, तो हमारे जो मन बुद्धि की स्क्रीन पर उसका जो फिगर आता है, जो चित्र आता है, उस चित्र को ना देखकर उसको आत्मा को देखना, ये प्रैक्टिस। जब भी कोई याद आता है, हमारे लौकिक माँ पिता भाई बहन कोई भी याद आता है, तो याद में उसको आत्मा ही देखना, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कि वो आत्मा देखना, वो फिर चिंतन करना कि वो आत्मा आई कहाँ से है, परमधाम में, परमधाम से तुरंत बुद्धि वहां से टच करके परमधाम जाएगी, फिर वहां बाबा याद आते हैं। जैसे मन का स्वभाव है तुरंत कहां से कहां जाने का, तो ये जो मन की कमजोरी है उसको शक्ति बना लेना, अपने आप को शक्तिशाली। जैसे जब भी कोई याद आए, आत्मा देखना, फिर आत्मा कहां से आई है, परमधाम, परमधाम में कौन है शिव बाबा, वो चिंतन चालू हो जाता है। ये प्रैक्टिस करने से होता है हमें बार बार। ऐसे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी हमें कोई देहधारी याद आता है, तो जब हम आत्मा रूप में देखते हैं तो न सिर्फ उसकी स्थिति ऊपर जाएगी, हमारे भी स्थिति ऊपर होती है इसमें, इस प्रैक्टिस से। यदि हम देह समझकर देह को याद कर रहे हैं तो उनकी भी स्थिति नीचे और हमारे भी स्थिति नीचे होती है। इसलिए जैसे हम यहां अभी हम यहां पर ज्ञान की चिटचिट कर रहे हैं, आपस में बैठे हैं, हम सभी की कभी सोल कॉन्शियस है कभी नहीं है, कभी आत्मा देख रहे हैं कभी नहीं देख रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। यहां से जाने के बाद यदि हम एक दो को याद कर रहे हैं वो ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हम एक दो के एनर्जी से जुड़ जाते हैं। इसलिए याद का बहुत महत्व है, तभी तो हम केवल याद मात्र से ही हम पावन बन जाते हैं। बाबा को याद करते हैं तो हम पति से पावन बनते हैं, हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, और किसी देहधारी को याद करते हैं तो ये चेक करना है कि कितने समय हम बाबा को याद करते हैं, कितने समय देहधारियों को याद करते हैं। तो कैलकुलेशन करें कि हम रोज कितना पतित बन रहे हैं, कितना पावन बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट स्टेप है दूसरा, अपने अंदर जब हमारे अंदर अभिमान आता है, कोई मैपन आता है, तो भी हमारे उस मन की स्थिति को डिस्टर्बेंस मतलब करता है, जो वॉइसलेस जो स्थिति है उसे हमें नीचे की तरफ लाता है। अभिमान मैपन, यदि कोई हमें विशेषता का अनुभव हो रहा है या कोई जैसे गुण कोई हमें अनुभव हो गया, उसमें अंदर हमारे अंदर मैपन आ गया कि ये मैंने किया, तो उसकी भी फीलिंग हमें तुरंत पता पड़ती है। तो उस मतलब कि बाबा एक मुरली में बताए कि जब भी जल्दी वरदान में आया था कि जहां पर भी मैंपन आता है वहां पर अभिमान का जन्म होता है। दूसरा, एक मुरली बाबा ने बताया था कि जब हम किसी के विचारों को कट करते हैं, किसी का भी विचारों का खंडन करते हैं, वहां मैंपन आता है, वहां अभिमान आता है। अगर समझो कि यदि हमारे अंदर कोई वीकनेस है, जैसे अमृतवेला नहीं उठने की, बार बार हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, अमृतवेला नहीं उठ पा रहे, मैंने बहुत क्लासेस किए, बहुत लोगों के अनुभव सुने, लेकिन हम अमृतवेला उठ नहीं पा रहे हैं, सपोज कभी उठ रहे कभी नहीं उठ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, बाबा को बार बार लेटर लिखते हैं, बाबा के सामने रोते हैं, बाबा ये हमारे अंदर कमी है, नहीं जाती। यदि बाबा ने हमारी कभी सुनवाई कर ली और अमृतवेला हम उठने लगे, और यहां पर यदि हमारे अंदर मैपन आया, तो जो दूसरे सोने वाले उनकी दृष्टि से देखने लगते हैं, अभी जुम्मा 8 दिन ही हुए अमृतवेला किए, फिर उनके ऊपर तंज करना चालू करते हैं, कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति यदि हमारी होती है तो फिर हम जो अमृतवेला उठने की आदत नहीं वो समाप्त हो जाती है, फिर हम भी सोने लगते हैं, क्योंकि वो मैपन आ जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर मैपन आता है, हमारे अंदर अभिमान आता है, तो जिनके अंदर कुछ कमियां रहती है ना, उनको हम कुछ न कुछ ज्ञान के रीति से ही सही उसको हम कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं, उनको हर्ट होता है ना, तो वो जो बद्दुआएं निकलती है, तो वो जो हमारे विशेषताएं उनको हप कर जाती हैं। इसलिए हमें एक तो मैपन, दूसरा किसी का भी, चाहे कोई भी क्लास करा रहा है कहां पर भी, चाहे छोटी बहन हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे कोई भी, चाहे एक दिन का भी स्टूडेंट हो, किसी के विचारों का हमें खंडन करना ही नहीं है, बोलना तो दूर, संकल्प में ही वो फीलिंग नहीं रखनी है। क्योंकि हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, किसको नहीं पता है कि रामायण में क्या है, किसको नहीं पता है कि गीता में क्या है, गीता पाठ क्या है, लेकिन कहां पर भी गीता पाठ या रामायण पाठ होता है, तो एक मुसाफिर जो जा रहा होता है ना, वो भी उस भावना से जाकर वहां बैठ जाता है कि दो शब्द हमारे कान में पड़ेंगे तो हमारे भाग्य बन जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी कुछ सुना रहा है, तो सुना तो भगवान का ही माव कर रहा है ना, चाहे कैसे किसी भी रीति से सुना रहा है, तो वो भावना हमारे अंदर वो ज्ञान के प्रति रहेगी, तो हम किसी के भी क्लास का, किसी भी के विचारों का हम खंडन अंदर से नहीं करेंगे, किसी का भी हम अंदर से विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि कभी ऐसे आता ना कि अरे वो ऐसे बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं। अंदर ये मन को प्रैक्टिस करा देना होता है कि हमें किसी के विचारों का खंडन बिल्कुल करना ही नहीं है, तो हमें अभिमान से हम बचते रहेंगे। तो जब हम अपने आप को हर तरह से, अपने मन की स्थिति को हर तरह के वायलेंस से, हर तरह के विकारों से सेफ रखते हैं, एकदम स्टेबल रखते हैं, तो हमारे अंदर वो कैचिंग पावर धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है। इस कैचिंग पावर में यदि हमें कोई व्यक्ति याद भी कर रहा होता है ना, तो उसका चित्र हमारे सामने बनने लगता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति हमें याद कर रहा है, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो। तो बाबा ने एक मुरली में बताया था कि किसी को नब्ज देख करके उसका ट्रीटमेंट करना, तो जैसे हमें कोई व्यक्ति किस भावना से याद कर रहा है वो भावना का भी पता पड़ जाता है, तो हम तुरंत बाबा की याद में यदि पावर है उसको, उस चीज का हम प्राप्ति करा सकते हैं। हम बॉम्बे में थे तो बाबा मिलन में आए हुए थे यहाँ पर मधुबन में, तो हमारी बहन जी ने एक सम्मान दिया था 2 दिन पहले वो प्रैक्टिस करने के लिए, कि मैं एकाग्रता संपन्न अर्जुन हूँ। उन्होंने बताया था कि 108 बार इसका प्रैक्टिस करना है सभी भाई बहनों के इकट्ठा करके बताया था, तो हमने तो उसको जैसे कि अजपा जाप बना लिया था, मैं एकाग्रता संपन्न अर्जुन हूं 2 दिन तक एकदम लगातार, मतलब कि कभी बीज एकाग्रता संपन्न अर्जुन, मतलब कि हमारे मन में बैठ गया था कि जैसे अर्जुन केवल निशाना एक पंछी के आंख में ही था उसका निशाना, ऐसे हमारा किधर भी बुद्धि योग नहीं जाए, केवल बाबा पर बीज रूपी अवस्था में रहे। इस अवस्था में 2 दिन तक था, और इस अवस्था में 2 दिन तक रहने के बाद, मतलब देहधारी तो कम याद आए थे बिल्कुल, बाबा की याद में उनकी याद थी, तो तो उसमें जब 2 दिन हुआ तो हमें बहुत सारे एनर्जी अपने आप ही फ्लो होने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ उस ग्रुप में हमारी कजिन आई थी, सगे मामा की लड़की, छोटी लड़की। तो नया नया जब हम ज्ञान में आए तो वो भी हमें ज्ञान में आता देख, वो भी कोर्स किया, वो भी चल ज्ञान में चल पड़ी थी, तो वो भी आई थी बाबा मिलन में। तो कुछ ज्ञान के बारे में पूछने या कुछ मधुबन के बारे में जानने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो कभी कभी वो हमसे मिलना चाहती थी। लेकिन हम भाइयों के ग्रुप में भीड़ में 25-30 हज़ार का भीड़ कैसे मिले, मोबाइल फोन भी नहीं, तो हम भी उसे ढूंढते थे लेकिन वो भीड़ में कहाँ मिले, नहीं मिल पाते थे, वो भी हमको ढूंढती थी। तो फिर बाद में जब नहीं मिले तो छोड़ दिया प्रयास। फिर हम डाइनिंग हॉल में भोजन कर रहे थे, ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में हम एक दूसरे लाइन में खड़े थे, तो अचानक ही उसका चित्र हमारे मन में बैठने लगा, उस बहन का। तो फर्स्ट टाइम हमें वो सडनली हमें क्लिक हुआ कि वो ना कहीं आसपास ही है, वो इधर ही कहीं है। तो हमने देखा दूसरी लाइन में भोजन ले रही थी, तो मैं गया उसके पास, देख लिया उसको। तो वो बोले थे, भैया आप कहाँ थे, मैं कब से ढूंढ रही थी ऐसे। तो ये फर्स्ट टाइम का हमारा ये अनुभव था, मतलब कैच करने का। दूसरा है कि हमारे बॉम्बे में एक बहन जी थी, बहुत ही, उनसे हमने योग की प्रेरणा ली ज़्यादा योग करने की, और इस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अटेंशन देने की, कैचिंग पावर की तरफ। क्योंकि अभी वो नहीं है, उनको कैंसर हुआ था, वो शरीर छोड़ दिए। तो जब हम सेवा करते थे, उस सेवा के बारे में जब दीदी कोई भी सेवा कराती थी, तो उस सेवा के बारे में हम जब भाई बहन आपस में बाद में बात करते थे, चिटचैट करते थे, तो बार बार दीदी दीदी करते रहते थे, क्योंकि वो सेवा कराती थी ना। एक दिन रात को 10 बजे हम अपने घर में, अपने हमारे लौकिक भाई जो भी ज्ञान में चलते, तो दीदी ने कुछ सेवा दिया था, हम लोग किए थे, तो हम आपस में बात कर रहे थे, दीदी ऐसे दीदी वैसे कराती है। तो दीदी का तुरंत फोन आया कि अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ। फिर धीरे से बोला, बहुत संकल्प करते हो। उस समय हमें लगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में ऐसी कोई हमारे संकल्प को कैच करना है तो उनको हम भगवान मानने लगते हैं, विश्वास नहीं होता है। कोई हमारे मन की बात बता देना, उनको भगवान मानने लगते भक्ति मार्ग में। और यहाँ ज्ञान मार्ग तो हर दिन नया नया अनुभव होते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट वो अनुभव था। हमारे अंदर ऐसा था, कैसे उनको पता पड़ गया कि हम उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो वहां से हमने फिर ज्यादा योग करने का प्रैक्टिस किया, वहां से अपने मन को ऐसे स्थिति में लाने के लिए। और भी अनुभव शेष हैं, फिर कभी सुनाएंगे। ओम शांति।